सर मेरा सवाल ये है कि एक आम इंसान कुरान मजीद को समझने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए उसकी, अगर उसका अरबी का बैकग्राउंड नहीं है तो। थैंक यू।
हमारे यहाँ तो अब 99% लोग, बल्कि शायद ये भी मुबालगा ही हो, अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं है। बर्रे सगीर में हम अपने बच्चों को कुरान की ज़ुबान सिखाने के लिए कभी आमादा नहीं हुए, तो इसलिए कोई चारा इसके सिवा नहीं कि तर्जुमा पढ़ें। उसके लिए मैंने हमेशा ये तवज्जो दिलाई है कि पहले मरहले में सिर्फ़ तर्जुमा पढ़ना चाहिए। जिस साहिब इल्म का तर्जुमा भी आप मुंतखब करें, कागज़ पेंसिल लेके किसी तफसीर के बग़ैर कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ें। मैंने भी इसी ज़रूरत के तहत अपना तर्जुमा अलग शाये कर दिया है, बल्कि अब तो भारत से वो मतन के बग़ैर भी शाये हो गया है। तर्जुमा पढ़ें और उस पर आप निशान लगाते जाएं कि आपको कहाँ मुश्किल पेश आई है। जब एक मुफस्सिर तफसीर लिखता है तो वो अपने जहन से ये मुतय्यन करता है कि यहाँ मुश्किल पेश आ सकती है, लेकिन इंसान इतने मुतनव्वे हैं कि कोई शख्स इसका अहाता नहीं कर सकता। तो हर आदमी अपनी मुश्किल मुतय्यन करे, उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, किसी चीज़ के बारे में कोई सवाल पैदा हो रहा है, कोई एतराज़ पैदा हो रहा है, उसे नोट करे। उसके बाद जो मुसलमानों के यहाँ तफसीर की रवायत है उसमें से मुंतखब कर ले दो तीन तफसीरें जो नुमाइंदा हैं, और दो तीन ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती, किसी इलम में भी नहीं होती। उनको देख ले कि उसमें उस मुश्किल पर कोई चीज़ लिखी गई है जो उसके लिए काबिले इत्मीनान हो सकती है। अगर वो मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, ना मिले तो जो साहिब इल्म भी उसके नज़दीक रसाई के महल में हो उससे रजू कर ले और अपनी बात बयान कर दे और उससे समझने की कोशिश करे। दुनिया के हर इल्म में यही मराहिल होते हैं, तो यहाँ पर भी यही इख्तियार करने चाहिए। इससे आगे बढ़कर जो लोग थोड़ी सी अरबी सीख लेते हैं या इधर उधर से कोई चीज़ और उसके बाद ख़ुद जमख्शरी और राज़ी बन बैठते हैं, वो अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। तो ये तरीका इख्तियार करना चाहिए।